मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज 13 अगस्त 2019 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और हार्दिक रूप से स्वागत भी करता हूं। और आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन 10 नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 10 से 24 अक्टूबर के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं अलका शर्मा, आपका गाँव है अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। अंकिता पांडे, आपका गांव है थौखर जिला रीवा मध्य प्रदेश। आकाश बघेल, दिल्ली से। अनुज प्रताप सिंह, गांव बेहटा जिला अमेठी उत्तर प्रदेश। दीपक श्योराण, आपका गांव है निमाड़ बड़ेसरा जिला चरखी दादरी। अंजलि, आप हैं फरीदाबाद हरियाणा से। अनीस अहमद, आपका गांव है सनहा जिला अमेठी उत्तर प्रदेश से। स्वर्णिम दुबे, आपका गांव है सपाही जिला सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से। राम कुमार सिंह तोमर, गांव भदावली जिला मुरैना मध्य प्रदेश से। और विजय शेरावत, जयपुर राजस्थान से। दोस्तों, आज के मुख्य विषय के अंतर्गत मैं आपसे भारत में प्राकृतिक आपदा इस विषय पर थोड़ी सी बातें करूंगा, लेकिन आइए पहले दूसरी घटनाओं को देख लेते हैं। आपके मेंस एग्जामिनेशन में एक बहुत बहुत और बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट ही कहना चाहिए, वह है सिक्योरिटी, सुरक्षा। और सबसे बड़ी बात सुरक्षा पर यह है कि इसका सिलेबस बहुत थोड़ा सा है, बहुत थोड़ा सा सिलेबस है, लेकिन इससे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। पहले भी मैं ये बात आपको बता चुका हूं, आज मैं जानबूझकर इसे रिपीट कर रहा हूं कि मेंस के लिए यह बहुत ही, आप यूं कह लीजिए कि उपजाऊ विषय है नंबर के मामले में। तो मित्रों, अभी शनिवार को एक समझौता हुआ है और वह समझौता आपको शायद न्यूज में आपने सुना हो कि त्रिपुरा का एक जो विद्रोही संगठन है उसके साथ हुआ है और केंद्र सरकार, त्रिपुरा सरकार और ये जो संगठन है जिसका नाम है नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, NLFTSD, इसका पूरा नाम है, आपको अखबारों में मिल जाएगा, उनके बीच हुआ है। और इस समझौते के तहत ये जो संगठन के लोग हैं, इन्होंने कहा है कि हम देश की मुख्य धारा में शामिल होंगे, इन्होंने सरेंडर किया है और बाकायदे अब सरकार इन पर जो भी आप कह लीजिए कि इनके पुनर्वास के लिए कोशिश होनी चाहिए वो करेंगे, और बाकायदे इस संगठन पर प्रतिबंध लगा हुआ था। तो आप देखेंगे कि हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है, बेसिकली इस तरह के उग्रवादी गतिविधियों से बुरी तरह से त्रस्त है और यही कारण है कि शायद वहां इतना आर्थिक विकास नहीं हो पा रहा है, और चूंकि आर्थिक विकास नहीं हो पा रहा है तो वो फिर से वहां असंतोष को जन्म दे रहा है। तो ये बहुत ही विशेष किस्म का एक साइकिल बन गया है। तो इस समझौते को बहुत वेलकम किया जा रहा है, इसका स्वागत किया जा रहा है और ये माना जा रहा है कि इससे प्रेरित होकर के जो दूसरे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं वहाँ भी जो विद्रोही संगठन हैं वे भी शायद मुख्य धारा में शामिल होने के लिए प्रेरित होंगे। मित्रों, इससे संबंधित मैं आपको एक एडिटोरियल कमेंट जो जनसत्ता का है वह प्रोवाइड कर रहा हूँ। खासकर देखिए, सुरक्षा पर जो आप टॉपिक तैयार करेंगे, जो आंसर तैयार करेंगे, उसके लिए बहुत जरूरी है कि करंट से उसे जोड़ते चले जाएं। एक बार आप बेसिक्स तैयार कर लें और फिर लगातार जो नई नई चीजें हो रही हैं, नई नई घटनाएं, नई नई नीतियां आ रही हैं, नए नए समझौते हो रहे हैं, स्थितियां बन रही हैं, रिपोर्ट्स आ रही हैं, लगातार उन्हें नोट करते चलें। दोस्तों, एक आर्टिकल मैं आज आपको प्रोवाइड कर रहा हूं नई दुनिया में, डॉक्टर भरत झुनझुनवाला जी का है, ब्याज दरें घटाने से नहीं बनेगी बात। ब्याज दरें घटाने से नहीं बनेगी बात। सामान्यतया देखिए, हम लोगों ने कुछ समय पहले इस बात की चर्चा भी की थी कि हम इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं, अगर हम 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं तो हमें इन्वेस्टमेंट लाना होगा। इन्वेस्टमेंट लाने के एक तरीके तो चलिए है कि भारत में विदेशी निवेश आए, दूसरा ये भी है कि बैंक अपने ब्याज दरें घटा दें। अगर ब्याज की दर घटा देंगे तो फिर लोग बैंक से ऋण लेकर उद्योग लगाने को प्रेरित होंगे। खासकर जब बैंक अपनी ब्याज दरें घटाते हैं तो उसके दो इम्पैक्ट होते हैं। देखिए, पहला तो सीधे सीधे ये होता है कि जो उद्योगपति हैं, चूंकि ब्याज कम हो गया है तो वहां से वो ऋण लेंगे बैंकों से और नए नए उद्योग लगाएंगे, तो निवेश हो गया। दूसरा ये भी होता है कि जो कंज्यूमर हैं, आप और हम कंज्यूमर हैं, कंज्यूमर को भी लगता है कि भाई ठीक है चलो बैंक से कर्जा ले लो, मकान खरीद लो, बैंक से कर्जा ले लो, गाड़ी खरीद लो, बाइक ले लो, तो वो बैंक से कर्ज लेने लगता है क्योंकि ब्याज दर कम हो गए हैं और उनके उस पैसे का इस्तेमाल वो सामान खरीदने के लिए करते हैं। तो जब सामान खरीदने के लिए करते हैं तो बाजार में उन वस्तुओं की डिमांड बढ़ जाती है और जब डिमांड बढ़ जाती है तो सीधी सी बात है कि वस्तुओं का जो उत्पादन हो रहा है उसकी बिक्री होने लगती है, तो अर्थव्यवस्था में एक नई जान आ जाती है। यहां उन्होंने इस आर्टिकल में बताया है कि नहीं, ऐसा इनफैक्ट नहीं होता है। उसके लिए उन्होंने अमेरिका का उदाहरण दिया है, इसे आप ध्यान से पढ़ेंगे। डॉक्टर भरत झुनझुनवाला जी बहुत उदाहरणों के जरिए लिखते हैं, अपनी बात को बहुत सरल तरीके से समझाते हैं, आप बड़े आराम से समझ लेंगे। इसमें इन्होंने जो सबसे बड़ी बात कही है वो ये कि जब तक भविष्य की अर्थव्यवस्था के प्रति लोगों में विश्वास का भाव नहीं होगा, तब तक आप बैंक रेट कितना भी कम कर लीजिए उससे निवेश बढ़ेगा नहीं। क्योंकि अगर लोगों को लग रहा है, मान लीजिए कि मैं बैंक से कर्ज ले रहा हूं और मुझे ये लग रहा है कि नहीं मेरी कमाई तो बढ़ेगी नहीं, मैं या इस कर्ज को पटा नहीं पाऊंगा, तो सीधी सी बात है कि मैं बैंक से ऋण नहीं लूंगा। इसी बात को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। मित्रों, आज के करेंट कंटेंट के तहत इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल आपको प्रोवाइड किया गया हिंदी में, भारत में 5G का भविष्य। मुझे लगता है कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो आपका टॉपिक है उसके लिए यह आर्टिकल शायद आपकी थोड़ी सी मदद करेगा। तो इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, वो आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर। आज के मुख्य विषय का जो बेस है या कह लीजिए जो बैकग्राउंड है वो कुल मिलाकर यह है फ्रेंड्स कि आप देख रहे हैं कि हमारे देश में अभी कितनी बुरी तरह से बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। साउथ में बाढ़ है, असम में बाढ़ है, बिहार में बाढ़ है और इस बार जरूरत से कुछ ज्यादा ही बाढ़ दिखाई दे रही है ना। जबकि बकायदे बाढ़ के बारे में शुरू से ही चेतावनी भी दे दी जाती है, इसके बाद भी इस बार बाढ़ से बहुत नुकसान हो रहा है। लेकिन मैं अभी बाढ़ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल भारत में जो प्राकृतिक आपदा के क्षेत्र हैं उस पर थोड़ी सी बातें करने जा रहा हूं। वैसे भी आपके जनरल स्टडीज का जो थर्ड पेपर है मेंस का, उसमें डिजास्टर मैनेजमेंट जिसे आप कहेंगे आपदा प्रबंधन, वह टॉपिक है और उस पर हर साल एक या दो प्रश्न पूछे ही जाते हैं। और चूंकि डिजास्टर मैनेजमेंट अपने आप में कुछ ऐसा सब्जेक्ट है कि वह आपके पर्यावरण से भी जुड़ जाता है, वह थोड़ा सा भूगोल से भी जुड़ जाता है, लेकिन ये मान करके चले कि सीधे सीधे डिजास्टर मैनेजमेंट पर एक प्रश्न होता ही होता है। तो आइए हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं कि भारत किस तरह के प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशील है, यानी कि भारत में कौन किस किस तरह की प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। पहली बात तो यह है फ्रेंड्स कि जो भारत की जो लोकेशन है वो कुछ इस तरीके की है कि प्राकृतिक आपदाओं के प्रति वो अपने आप संवेदनशील हो जाती है। जैसे अब आप देखिए कि इसकी जो जल क्षेत्र आप देखिए तो 7500 किलोमीटर का तो हमारा तटीय क्षेत्र है। आप देखते हैं ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट और इसके बाद साउथ का टिप पूरा, अरब सागर एक तरफ है और बंगाल की खाड़ी एक तरफ है और साउथ में पूरा का पूरा हिंद महासागर है। तो 7500 किलोमीटर आप सोचिए कि अगर हमारे पास तटीय क्षेत्र है तो ये जो तटीय क्षेत्र है समुद्र के वातावरण से प्रभावित होंगे, इसीलिए आप पाएंगे कि हमारे यहाँ उष्णकटिबंधीय चक्रवात बहुत आते हैं जिसे आप तूफान कहते हैं। तो तूफान बहुत आते हैं और ये तूफान भी आपको ध्यान रहना चाहिए, प्री एग्जामिनेशन में भी इस तरह के सवाल प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि पूर्वी क्षेत्रों में ज्यादा आते हैं, पश्चिमी क्षेत्र में भी आते हैं लेकिन पश्चिमी क्षेत्र में अपेक्षाकृत कम आते हैं। दूसरी बात कि जो हमारी जो हमारा जो धरातल है खासकर उत्तर भारत का, ये जो हिमालय वाला पूरा का पूरा क्षेत्र है, चट्टानों की दृष्टि से आप इसे कोमल चट्टानों वाला क्षेत्र कह सकते हैं, मतलब ये चट्टाने अभी बन रही हैं और चूंकि ये कोमल चट्टानों का क्षेत्र है तो स्वाभाविक तौर पर ये जो एरिया है पूरा का पूरा वो भूकंप के लिए संवेदनशील हो जाता है। तो आप देखेंगे कि जब भी भूकंप आने की बात आएगी तो उत्तर भारत होगा, मध्य भारत और पश्चिम भारत में भी भूकंप आते हैं लेकिन सबसे ज्यादा उत्तर भारत में भूकंप आते हैं और लगभग 60% हमारा जो पूरा लैंड एरिया है, 59% आपको पढ़ने को मिलेगा, वो भूकंप के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील है। ठीक इसी तरह से हमारे यहाँ बहुत सी नदियां हैं और उन नदियों के कारण और हमने जो अपने मानव निर्मित जो संकट खड़े कर लिए हैं जो बाढ़ आने का कारण बन जाते हैं, वो 12% लैंड टोटल भौगोलिक क्षेत्र का 12% बाढ़ से प्रभावित होता है और भूमि कटाव से प्रभावित होता है। और 12% दोस्तों कम नहीं है, ये बहुत बड़ा क्षेत्र है। इसके बाद हमारे जो बाढ़ की ही स्थिति में देखें, अगर हम गणना करें तो 22 राज्य लगभग इससे ज्यादा प्रभावित होते हैं और 4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर जो फसल होती है, जो लोग होते हैं, उन पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। और आप अभी भी अखबारों में पढ़ रहे होंगे कि जो ज्यादातर बाढ़ आ रहे हैं वो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मैदान में सबसे अधिक बाढ़। ऐसा नहीं कि साउथ में भी, अभी आप देख रहे हैं कि केरल में है, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है, वो गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान नहीं है, लेकिन जो सबसे ज्यादा बाढ़ आते हैं वो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों में। असम में अभी बाढ़ बकायदे आई ही हुई है। एक तरफ हम बाढ़ के प्रति संवेदनशील है तो दूसरी तरफ सूखे की आशंका बनी रहती है। सोच के देखिए, लगभग 70% लैंड, 68% एग्जैक्ट है कि उसमें लगातार अकाल की आशंका बनी रहती है। याद रखिए कि अकाल भी बकायदे बाढ़ प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत ही आता है। फिर आप पहाड़ी इलाकों में अभी न्यूज में पढ़ते होंगे कि कहीं बादल फट गए हैं तो कहीं भूस्खलन हो गया है, इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। गर्मी के दिनों में फिर आपको न्यूज पढ़ने को मिलती है कि कहीं जंगलों में आग लग गई है तो कहीं शहर की बिल्डिंग में आग लग गई है। बरसात में आप ये भी सुन, अभी कुछ ही समय पहले आप देखिए कि बॉम्बे वगैरह में क्या हुआ था कि बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग है वो गिर गई हैं। ये सब के सब प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत ही आती हैं। इसमें से कुछ आपदाएं होती हैं जो नेचुरल होती हैं, कुछ आपदाएं वो होती हैं जो मनुष्य ने अपने कर्मों से तैयार कर लिए हैं। तो ये भारत का मैंने एक छोटा सा दृश्य आपके सामने रखा है कि हमारे कौन कौन से एरियाज किस किस प्रकार के प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशील हैं। तो दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं: अतुल चौहान, शुभम शर्मा गोंडा उत्तर प्रदेश से, चंदन उपाध्याय कुशीनगर उत्तर प्रदेश से, राकेश कुमार राजभर गोरखपुर उत्तर प्रदेश से, तमन्ना सेठ जम्मू से, चंदन सिंह कुंवर सत्य पांडे प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश, सुरभि कुमारी पूर्वी चंपारण बिहार, केशव भारद्वाज बिहार और सौरभ पटेल सालारपुर उत्तर प्रदेश से। आप सबका बहुत बहुत आभार। और मित्रों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।